क्यों रहना है आपको अकेले? और भूख कैसी नहीं है आपको? आपको पता है ना कि अगर आपने खाना नहीं खाया तो दवाई नहीं ले सकेंगे, और अगर दवाई नहीं लिए तो जल्दी से ठीक कैसे होंगे? सुभाषी ने कृतज्ञता भरी निगाहों से उसे देखा और उंधे गले से बोले, कैसे कर लेती हैं आप इतना कुछ होने के बाद भी सामान्य व्यवहार? जिन्होंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, आप उन्हीं के पिता की इतनी चिंता कर रही हैं? आरवी ने उनकी बात सुनी तो इनकार में सर हिलाते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं उनकी नहीं, अपने डैड की परवाह कर रही हूँ, जिन्हें मैं जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होते देखना चाहती हूँ। मेरे और उनके बीच जो भी प्रॉब्लम है उसका आप सबसे तो कोई लेना देना नहीं। आप में से किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो मैं सज़ा आप सबको कैसे दे सकती हूँ? फिर भले ही मेरा उनसे रिश्ता जुड़ा इसलिए मैं इस घर में आई और आप सबसे मिली, पर हमारा रिश्ता उनका मोहताज तो नहीं। पहले भी उनका मेरे लिए व्यवहार ऐसा ही था, पर आप सबके प्यार की वजह से मैं इस घर में रह सकी, और अब भी मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है। मुझे उनके अलावा किसी से कोई शिकायत नहीं है, तो आप भी खुद को उस गलती के लिए दोष मत दीजिए और चलिए ब्रेकफास्ट के लिए। मैं नहीं चाहती कि इन सब बातों का असर मेरा बाकी परिवार वालों के रिश्ते और आपकी सेहत पर पड़े। हमारे बीच जो भी है उसे हम सुलझा लेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आपको बस मुझे पहले जैसे ही प्यार करना है, ताकि आपका प्यार मेरी हिम्मत बने और मैं कमज़ोर ना पड़ूं। चलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उनके दिल से नफ़रत की इस भावना को मिटाकर उन्हें वो बना सकूं जो वो असल में है पर दिखते नहीं। आरवी की बात सुनकर सुभाष जी कुछ भावुक हो गए। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है बेटा। महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, जो हम नहीं कर सके वो काम कर सके, और शान को नफरत के अंधेरों से प्यार के उजाले में ले आए। आरवी हौले से मुस्करा दी और उन्हें अपने साथ लेकर बाहर आ गई। अर्पिता जी सुयश जी को मना कर ले आई थीं। सबने बेमन में खामोशी से नाश्ता किया। आरवी ने नाश्ते के बाद सुभाष जी को दवाई दी, फिर अंशु को छोड़ने चली गई। आज उसका अकेडमी जाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए अंशु को छोड़कर वो वापस घर चली आई। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा उसके कदम ठिठक गए। अर्पिता जी और सुभाष जी के साथ बैठी रश्मि, जो थोड़ी देर पहले ही वहां आई थी, उसकी नज़र जैसे ही कुछ दूरी पर खड़ी आरवी पर पड़ी, वो भागते हुए जाकर उसके गले से लग गई। आरवी की आंखें एक बार फिर नम हो गईं, पर उसने खुद को संभाल लिया और उससे अलग होते हुए बोली, तू कब आई? तूने को मुझे बताया ही नहीं कि तू आने वाली है। छुपाया तो तूने भी मुझसे बहुत कुछ है, और अब भी अपना दर्द और तकलीफ मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है। रश्मि के नाराज़गी से कहे इन शब्दों को सुनकर आरवी एक पल को खामोश रह गई, फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तू गर। आरवी आगे बोली रही थी कि रश्मि ने उसकी बात काटते हुए रोष भरे स्वर में कहा, मैंने कल पार्टी की पूरी वीडियो देखी है। आरवी अब आगे कुछ कह न सकी। उसने अपना सर झुकाते हुए आंखों में आई नमी को छुपाने की कोशिश की, पर रश्मि उसके आंसुओं को पहले ही देख चुकी थी। सुभाष जी और अर्पिता जी की परेशानी भरी नजरें एक दूसरे की तरफ घूम गई। आंखों ही आंखों में दोनों की कुछ बात हुई। फिर अर्पिता जी ने आरवी को देखते हुए कहा, आरवी बेटा, रश्मि को अपने कमरे में ले जाइए, वहां आराम से बात कीजिए, हम आप दोनों के लिए चाय नाश्ता भेजते हैं। आरवी ने हाँ में सर हिला दिया। उसने तो मुंह से कुछ नहीं कहा, पर रश्मि ने उनके तरफ मुड़ते हुए तुरंत ही इनकार करते हुए कहा, नहीं आंटी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस आरू से बात करनी है, वैसे भी मैं नाश्ता करके आई हूँ। अर्पिता जी कुछ कह ना सकी। शान की हरकत ने उन्हें कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं था। उन्होंने मायूसी से सर हिला दिया। रश्मि ने आरवी का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद दोनों अंशु के रूम में बैठे थे। आरवी सर झुकाए बैठी थी और रश्मि आंखों में ढेरों सवाल लिए उसे देख रही थी। जब कुछ देर बाद तक भी आरवी ने एक शब्द तक नहीं कहा, तो आखिर में रश्मि ने ही उसकी खामोशी से परेशान होकर कहा, अब कुछ बोलेगी भी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है? जीजू कल पार्टी में क्या बकवास कर रहे थे तेरी आइडेंटिटी के बारे में, और वो वीडियो क्या मतलब था उन सबका? आखिर तेरे और जीजू के बीच चल क्या रहा है? वो क्या कह रहे थे तेरे बारे में, और इतनी बदतमीजी से तूने उन्हें अपने साथ पेश कैसे आने दिया? कुछ तो बोल यार, आखिर हो क्या रहा है तेरी जिंदगी में? रश्मि एक तो शान के बताए सच के वजह से परेशान थी, उस पर शान की कल की पार्टी में आरवी के साथ की बदसलूकी का वीडियो भी देखा था उसने, इसलिए उसका दिमाग खराब हो रखा था, और अब आरवी की ये खामोशी जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। रश्मि की बात खत्म होने के बाद आरवी ने सर उठाकर उसे देखा और भारी गले से बोली, मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी में क्या और क्यों हो रहा है। सब तो ठीक चल रहा था, फिर अचानक ही मुझे पता चला कि माँ मेरी सगी माँ नहीं है, उन्होंने बस मुझे पाला है, और उसके बाद से सब बिगड़ता चला गया। मेरी असली पहचान एक तूफान की तरह अचानक मेरी जिंदगी में आया और सब कुछ तहस नहस करके चला गया। पहले मुझे पता चला कि मैं माँ पापा की सगी बेटी नहीं, मेरे जन्मदाता पिता गंदे थे, उन्होंने मेरी सगी माँ को धोखा दिया, और जब माँ को उनके धोखे के बारे में पता चला तो वो घर छोड़कर चली गई। माँ पापा ने मुझे और मेरी जननी माँ को सहारा दिया, पर ज्यादा वक्त तक जिंदा न रह सकी। उसके बाद माँ पापा ने मुझे अपनी बेटी बना लिया। अचानक मुझे पता चला कि जिन्हें मैं अपनी मम्मी पापा समझती हूँ मैं उनकी बेटी नहीं,
आसान नहीं था मेरे लिए सच्चाई को स्वीकार करना, पर मैंने ये सच्चाई स्वीकार की जिसमें उन्होंने भी मेरा साथ दिया। फिर एक दिन अचानक ही वो शराब पीकर आए और कहने लगे कि उन्हें मुझसे नफरत है। मैं तो कुछ समझ ही नहीं सकी। उसके बाद से उनका व्यवहार मेरे लिए बिल्कुल बदल गया। हर चीज में वो नफरत जाहिर करते और मेरे लाख पूछने पर भी मुझे उस नफरत की वजह नहीं बताते थे। फिर भी मैं अपने तरफ से कोशिश करती रही कि कभी तो उनकी नफरत पर मेरे प्यार की जीत होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कल वो मुझे पार्टी में लेकर गए और वहां मुझे पता चला कि मुझे जन्म देने वाले पिता कौन है। तब मुझे अपनी असली पहचान पता चली कि मैं अमरजीत ठाकुर की बेटी आत्या ठाकुर हूँ और उन्होंने ही कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से वो उनसे नफरत करते हैं। और क्योंकि मैं अमरजीत ठाकुर की बेटी हूँ इसलिए वो उनके गुनाहों की सजा मुझे दे रहे हैं। मुझे अब भी ठीक से नहीं पता कि क्या किया है मेरे पिता ने, पर उनकी नफरत और बातों से लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और उसी की सजा के रूप में मुझे उनकी नफरत और ये जिल्लत भरी जिंदगी मिलने जा रही थी। इससे ज्यादा अभी मैं खुद कुछ नहीं जानती, पर इतना मालूम है कि वो बहुत नफरत करते हैं मुझसे और ठाकुर परिवार से अपनी दुश्मनी निभाने के लिए वो मुझे मोहरा बनाने वाले हैं ताकि मेरे जरिए मिस्टर ठाकुर को तकलीफ पहुंचा सके। और यही वजह थी कि कल उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया था। सब बताते हुए जाने कितनी ही बार आरवी की आंखें बरसी थी और कितनी ही बार उसने अपने आंसुओं को पहुंचा था। आरवी की बातें रश्मि के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, पर मीडिया में फैली खबरों और आरवी की बताई बातों के बाद इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि यही सच था। रश्मि आरवी की बात सुनते हुए बहुत कुछ सोच रही थी। आरवी जैसे ही चुप हुई रश्मि ने हल्के गुस्से से कहा, मतलब जीजू तुझे उस गुनाह की सजा दे रहा है जो तूने नहीं तेरे उस बाप ने किया है जिसे तू कल तक जानती तक नहीं थी।
आरवी ने सर झुकाते हुए हामी भर दी। रश्मि ने अपना सर पकड़ लिया। उसे इस वक्त शान पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसे वो काबू करने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो अपनी कोशिश में सफल ना हो सकी। और कुछ देर बाद उसने गुस्से में मुट्ठियों को कसते हुए कहा, ये कैसा लॉजिक है, मतलब हद होती है, वो किसी और की गलती की सजा तुझे दे भी कैसे सकते हैं? अपनी दुश्मनी में वो इतना कैसे गिर सकते हैं कि अपनी ही पत्नी की इज्जत का सरेआम तमाशा बना दिया? इस आदमी का ना दिमाग हिला हुआ है, तुझे यहाँ रहकर उसके टॉर्चर को सहने की कोई जरूरत नहीं है यार। वो आदमी अपनी नफरत में पागल हो गया है, उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। और इससे पहले कि बदले की भावना में पागल वो आदमी तुझे और तकलीफ पहुँचाए या दर्द दे, तुझे उनसे दूर चले जाना चाहिए। जब पास नहीं रहेगी ना तब उनकी अकल ठिकाने आएगी, और अगर यहीं रही तो जाने आगे वो तेरे साथ और क्या क्या कर जाए। इसलिए एक काम कर, तू अभी इसी वक्त मेरे साथ चल। कल की उनकी हरकत के बाद मुझे उस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो तुझे और नुकसान पहुंचाए उससे पहले ही तुझे यहाँ से और उनसे दूर चले जाना चाहिए। वैसे भी जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रहना नहीं चाहिए। चलो जल्दी से अपना जरूरी सामान पैक कर और मेरे साथ चल। टू बी कंटिन्यूड।